ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची। वे न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडिकिरो के निमंत्रण पर वहां गई हैं। राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्सी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों में से 57 केन्द्र टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 54 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की आज शाम चर्चा का उत्तर देने की संभावना है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि वित्त विधेयक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जोशी ने कहा कि 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,48,00,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, कृषि और लॉजिस्टिक युवाओं के सबसे पसंदीदा क्षेत्र रहे हैं। सरकार ने आज कहा कि देश में 1,702 रेलवे स्टेशनों पर कुल 1,936 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट काम कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 67,979 प्रत्यक्ष लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने पिछले 5 वर्षों में 149 निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने बताया कि स्वायत्त दर्जा देने के लिए UGC को देशभर के विभिन्न कॉलेजों से 806 प्रस्ताव और आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 613 प्रस्तावों को UGC ने मंजूरी दे दी है। के कैलाशनाथन ने आज पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। राजनिवास में आयोजित समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच अब CBI करेगी। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद नए अधिकारियों ने आज देश के पुलिस बल को पुनर्गठित किया। नई व्यवस्था के तहत अपर पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद हारून AR राशिद को AKM शाहिदुर रहमान के साथ रैपिड एक्शन बटालियन के महानिदेशक के रूप में बदला गया है। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि रात में टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आज सुबह फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि यह दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन हैं। वे भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महिला कुश्ती में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में आज अंतिम पंघाल को हार का सामना करना पड़ा। टेबल टेनिस में महिला टीम को जर्मनी से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारोत्तोलन में आज रात 11 बजे 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीराबाई चानू अपनी चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।